الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے جو اس کا پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے وہ پرٹیکولرلی بزنس ٹریڈ فائنانس مالی لین دین اس حوالے سے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی مبارک تعلیمات جو حکم دیتی ہیں وہ آپ کو پتہ چلے اتھینٹک مستند ذرائع سے پتہ چلے تو الحمدللہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا انار سے چھوٹا مکھن سے نرم شہد سے میٹھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں اس کا پھل وہی کھا سکے گا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کریں گے ایک بڑا بنیادی سوال آج کل جو ایام چل رہے ہیں مجھے بنیادی لگ رہا ہے ہر کسی کے لیے بنیادی ہو یہ ضروری نہیں ہے مفتی صاحب بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ جو مالی حوالے سے ہی لاگو ہوتی ہیں اس میں سے قربانی بھی ہے اور احکام حج تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو ناظرین ہمارے سامنے ساتھ ہیں ان کے لیے اس بات کی وضاحت فرمائیے کہ حاجی قربانی کرتا ہے اور بعض حاجی قربانی کرتے ہیں بعض نہیں کرتے تو قربانی کے حوالے سے حاجی کی کیا تفصیل ہے کون سا حاجی قربانی کرے گا کون نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ کہ کس نصاب پر قربانی ہوگی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جو دن ہیں وہ تو 10, 11, 12 یہ تین دن ایام نہر ہیں ایام قربانی ہیں تو حاجی کا جو آپ نے سوال کیا ہے
جی
قربانی سے پہلے حاجی مسئلہ پوچھ رہے ہیں نماز کا
ٹھیک
مکہ مکرمہ میں جو حاجی
جی
پہنچ جاتا ہے مینا جانے سے پہلے 15 دن اس کے نہیں ہو رہے
ٹھیک مینا پہنچنے سے پہلے پہلے 15 دن نہیں ہو رہے پورے
اب دیکھیے 7 تاریخ کو وہ نکلے گا رات کو نکلتا ہے عام طور پہ 7 کو
ٹھیک ہے
چلو شام کو نکلے گا زور کے بعد نکل جائے گا
ٹھیک
تو 7 تاریخ کا مطلب یہ ہوا کہ 7 تاریخ کا آدھا دن ہم لگا لیتے ہیں
صحیح
ٹھیک ہے پہلی تاریخ کو چاند نظر آیا اور 7واں دن تک
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اب ہم فرض کرتے ہیں 30 کا چاند ہوا ٹھیک ہے اور کوئی حاجی وہاں پر پہنچا 25 کو
صحیح
تو کتنے دن ملے سے یعنی ذل اس مہینے کی 25 تاریخ کو
5 اور 7 12 دن
ملے ایک حاجی پہنچا 24 کو کتنے دن ملے
13
ایک حاجی پہنچا 23 کو
14 دن
ملے اب 23 والا جو حاجی ہے یہ آ جائے گا گھنٹوں اور منٹ پر
صحیح
کہ ہو سکتا ہے کہ آگے نکلنا ہو اس کا بعد میں
صحیح
سیف زون جو ہے وہ ہے 22 تاریخ
ٹھیک
22 ذوالحجہ کو جو پہنچا ہے یقینی طور پر اس کو کتنے دن ملیں گے
15 دن ملیں گے 15 دن 23 کو 22 کو 15 دن ہو جائیں گے 14 دن ہو رہے تھے
نہیں ہم کہیں اور 24 کو 24 کو جو حاجی پہنچا ہے
جی اس کو 15 دن
نہیں ملے
جی
جو حاجی 24 ذی القعدہ کے بعد پہنچا ہے
جی
مکہ مکرمہ اس کو تو لازمی طور پر جو ہے وہ 15 دن نہیں مل رہے ہم نے تو چاند لگایا اپنا 30 کا 29 کا بھی پاسبل ہوتا ہے لیکن پاکستان میں تو اس سال جو ہے نا وہ 30 کے امکانات زیادہ ہیں یعنی ذی القعدہ کے 30 ہونے کے امکانات زیادہ ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 14 دن بنے مکہ مکرمہ میں کیونکہ اس کے بعد تو اس کو مینا جانا ہے مینا اور مکہ دو الگ الگ مقامات ہیں
ٹھیک
मुसाफिर के मामले में।
सही है।
अब अगर हाजी पहुंचा 21 को
सही है
तो यकीनी तौर पर 15 दिन मिले,
सही है।
मदीना मुनव्वरा अगर उसको बाद में जाना है बाहर, यानी हज के बाद जाना है,
यानी 21 को मक्के में पहुंच गया और 7 को निकल रहा है, तो इसे 15 दिन तकरीबन
यकीनी
मिल
तौर पर
जाए।
मिल गए,
ठीक है।
तो इन सारे सूरत हाल को कैलकुलेशन करते हुए आप अंदाजा लगाएं हम मुसाफिर हैं या नहीं है। हर बंदा मुसाफिर का पूछ रहा है, हर बंदा पूछ रहा है, तो यूं थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद भी करें। फार्मूला हमने आपको दे दिया है।
मुझसे एक शख्स, अब बात चलिए तो पूरी कंक्लूड हो जाए, जरा जो एक शुबा पैदा हो रहा है वो क्लियर हो जाए, कि एक शख्स बिलफर्ज 20 तारीख को ही मक्के शरीफ पहुंच गया, लेकिन फिर मक्के से वो 22 तारीख को मदीने चला गया या किसी ऐसी जगह चला गया जो मक्के से बाहर शुमार होती है, और फिर रिवर्स आया, वापस आया।
देखिए, आम हाजी तो नहीं जाता,
सही
जाता है तो मदीना मुनव्वरा जाता है।
सही।
मदीना मुनव्वरा जब जाएगा 400 किलोमीटर दूर है, इकामत वैसे बातिल हो गई।
ठीक है।
कोई गया दिन के अंदर, जद्दा वापस होकर आ गया दिन ही दिन के अंदर, तब भी इकामत बातिल नहीं हुई, उसकी जो इकामत है वो चल रही है।
ठीक है।
तो जाने वाला फिर अलग से एक मसला पूछे।
सही।
पहले तो पहला मरहला तय करे ना कि मेरा मक्का मुकरमा में कितनी मुद्दत की इकामत हो रही है।
ठीक। कितने दिन मैं मक्के में ठहरा हूँ ये देख।
अब नाजिन सोच रहे होंगे कि भाई सारी बातों का आपके सवाल से क्या ताल्लुक है।
जी, कुर्बानी वाले से क्या ताल्लुक
बड़ा गहरा ताल्लुक है।
जी।
जो आदमी अय्याम कुर्बानी में मुसाफिर हो,
ठीक है,
उस पर ईद की कुर्बानी वाजिब नहीं है।
ठीक है। यानी ये जो सवाल था मेरा कि कुर्बानी करेगा या नहीं करेगा, उससे ये ताल्लुक है।
अब अगर कोई आजी पहुंचता है कि वो मीना जाने से पहले कसर नमाज पढ़ रहा है, तो मीना मुजलफा में भी जो है वो मुसाफिर ही रहेगा।
ठीक है।
एक सूरत बनती है, बड़ी टफ सूरत है
जी।
वो, मीना से निकल के आखिरी दिन की रमी करके मक्का मुकरमा में आ गया, और अब उसको 15 दिन ठहरना है
मक्के शरीफ में,
मक्का शरीफ में, तो अय्यामे कुर्बानी में वो मुकीम हो जाएगा, कुर्बानी करना उस पर लाजमी हो जाएगी।
ठीक।
हम बात कर रहे हैं ईद की कुर्बानी की।
जी।
हाजी पर जो है वो दो कुर्बानियां हो सकती हैं।
ठीक है।
एक तो ईद की कुर्बानी
अगर मुकीम है तो कुर्बानी,
ठीक है,
ठीक है,
और दूसरी बाज हाजियों पर हज की कुर्बानी वाजिब है।
सही।
हज इकरार करने वाले पर वाजिब है, तमत्तो करने वाले पर वाजिब है, हज इफराद करने वाले पर वाजिब नहीं है।
ठीक। मुझसे दूसरा इसी के साथ एक अगला सवाल भी मैंने अर्ज किया था कि कुर्बानी का निसाब जो है वो ज़कात वाला ही होगा, कौन सा होगा, क्या करें?
सदका फितर का जो निसाब है और सदका फितर में जो डिटेल है वही निसाब कुर्बानी करने का है। जिस तरीके से हर आदमी को अपने बैलेंस का एतबार करके देखना होता है, बालिग फर्ज जो है, ना बालिग पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, ना माँ बाप पर वाजिब है कि उसकी तरफ से कुर्बानी करे, बखिलाफ सदका फितर के वहां पर जो है वो माँ बाप जो है बच्चे की तरफ से सदका फितर अदा करते हैं, लेकिन कुर्बानी के मामले में ऐसा नहीं है। हर बालिग फर्द ने अपना बैलेंस देखना है, शरायत पाई जा रही हैं तो वो अपनी कुर्बानी करेगा, वरना उस पर वाजिब नहीं है।
यानी मुझसे आपके जवाब से तो ये वाज़ेह हुआ कि बाज़ लोग ऐसे होंगे जिन पे ज़कात तो वाजिब नहीं है लेकिन कुर्बानी वाजिब हो रही होगी उनके ऊपर, क्योंकि आपने फरमाया सदका फितर की जो निसाब है वो देखा जाए। ठीक,
ऐसा ही है।
तो इस हवाले से देख लें, चेक कर लें।
जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ।
जी।
एक आदमी के पास दो घर है,
सही,
और उसकी एक नौकरी भी है।
सही।
ऐसा नहीं है कि भाई जो दूसरा घर है जो किराए पर चढ़ा हुआ है उसी की आमदनी पर गुजारा होता है, ऐसा भी नहीं है।
सही है।
उसकी नौकरी भी लगी हुई है।
सही है।
तो दूसरा जो घर है वो है हाजत असलिया से जायद।
ठीक है। उसमें ना रहता है ना वो जरूर।
अब वो किराए पर चल रहा है, उस घर की तो जकात पर वाजिब नहीं थी।
ठीक है।
उस घर के अलावा हम फर्ज करते हैं कुछ भी नहीं है।
सही है।
ये घर है लाखों का,
सही है,
किराए पर चल रहा है।
ठीक है।
अब उस घर की वजह से जकात तो नहीं हो रही थी
जी,
लेकिन कुर्बानी बनेगी इस पर।
ठीक, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें बाज़ औक़ात मुगालता हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है कि जी ज़कात नहीं है तो कुर्बानी भी नहीं है। वैसे तो मुफ्ती साहब ने जवाब इरशाद फरमा दिया, नहीं समझ में आए तो आप किसी मुस्तनद सुन्नी आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम से पूछिए। कॉल की तरफ बढ़ेंगे और पहली कॉल शामिल सिलसिला करेंगे। जी।
मुफ्ती साहब की खिदमत में अर्ज है, मुल्की मईशत की खराबी की वजह से और लोग बेरोजगारी की वजह से मुख्तलिफ जराइम इख्तियार कर रहे हैं, तो मौजूदा मुल्की मईशत को बेहतर बनाने और जराइम की रोकथाम के लिए इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? इरशाद फरमा दीजिए, जजाकल्ला।
जी मुफ्ती साहब,
देखिए, जराइम का ताल्लुक मुल्की मईशत से नहीं है। मुल्की मईशत अगर आज बेहतर नहीं है और कल बेहतर थी तो जराइम तो कल भी हो रहे थे, स्ट्रीट क्राइम तो कल भी हो रहे थे। जराइम का ताल्लुक है ऐशो इशरत से, ये डाकू लुटेरे, ये स्ट्रीट क्रिमिनल, ये अय्याशिया करना चाहते हैं, ये कामकाज नहीं करना चाहते, मुफ्त का माल हासिल करना चाहते हैं, मुफ्त पर गुजारा करना चाहते हैं, काहिल हैं, निकम्मे हैं, इसीलिए चोर भी हैं। तो जराइम का ताल्लुक जो है वो होता है मौके से। एक बंदा कहता है मैं जो मर्जी हो जाए रिस्क लूंगा, जुर्म करूंगा, हलाल और हराम की तमीज नहीं रखूंगा। अपने अंजाम को तो पहुंचता है, दुनिया में भी पहुंचता है, आखिरत में भी पहुंचेगा अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन बात यह है कि इतना तो कहा जा सकता है कि एक आदमी बिल्कुल ही बेबस हो गया है, अच्छे घर से उसका ताल्लुक है, वो इतनी जल्दी हाथ भी नहीं फैलाता किसी के सामने, ठीक है, कतई नजर इसके कि वो किसी के सामने गन उठाए और जुर्म करे। असल चीज है माहौल। जो मुजरिम है इनकी अपनी एक इंडस्ट्री है, तो जो बंदा इन लोगों के साथ उठना बैठना करता है तो वो आहिस्ता 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 मुजरिम बन जाता है। एक गरीब आदमी कितना ही गरीब है जो हाथ फैलाना पसंद नहीं कर रहा, वो जुर्म कैसे करेगा? तो नो डाउट बाद लोगों को शैतान वरगलाता है, वो जुर्म भी करते हैं जब परेशानियां आती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जी जराइम का ताल्लुक मैशियत की खराबी से है। जराइम का ताल्लुक नीयत की खराबी से है। नीयत अच्छी हो तो बंदा किनात इख्तियार करता है, कम पर गुजारा करता है, लुका सुखा खा लेता है। सूफिया की जो तालीमात है वो क्या है? वो तो कहते हैं कुछ भी हमारे पास ना हो, मिल्कियत में कुछ रखे ही ना
जी,
लेकिन उनका तो इतना आला तवक्कुल हुआ करता है। तो असल चीज है नीयत और ऐशो इशरत की धुन और हलालो हराम की तमीज उठा देना। ये चीजें जो है जहाँ होंगी तो वहां जराइम भी होंगे, वहां सब कुछ हलाल है। फिर तो मतलब जहाँ हदूद नहीं है, कयूद नहीं है, इन लोगों को फिर कौन समझा सकता है?
सवाल इस पे बन रहा है।
जी जी,
वही कि आपने जवाब इरशाद फरमाया और आपकी तरफ से इसी जवाब की तवक्को थी, लेकिन हमारे मुआशरे में एक तो इन्होंने पैरा बयान फरमाया ना, एक इन्होंने क्या कहना चाहिए उसका वो बैकग्राउंड बयान फरमाया, गोया के एक नतीजा करार दिया है जराइम को कि जब तंगी होगी, मईशत आपकी डूब रही होगी तो लोगों को तंगियां होंगी, और तंगी की वजह से गोया के रीजन बयान कर दिया गोया कि इन्होंने बहुत सारे जराइम में, गंदे जराइम में, बिलखसूस माली जराइम में। एक तबका तो वो है ना सीना चौड़ा करके कह रहे हैं हाँ भाई हम चोरी कर रहे हैं, जो करना कर लो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक तबका होता है जो बड़ी मासूमाना शक्लो सूरत बनाकर कहता है बताओ हम करें क्या, हम ये ना करें तो करें क्या, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम तो यूं ही करेंगे। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो मैं उस तबके को देखते हुए समझा हूँ ये जो मुख्तलिफ लोगों ने कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने गुनाह को जवाब फराम कर रहे हैं, एक रीजन दे रहे हैं और अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे पास तो कोई वो नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हम तो फंस गए, हम तो यूं हो गया। अच्छा बात तो यूं भी कह रहे होते हैं कि भाई खुद तो हम चलो कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन फैमिली का क्या करें, बच्चों को रोता हो कोई नहीं देख सकता, कोई औरत बच्चों को नहीं देख सकती रोता हुआ, अपनी माँ, कोई बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, ये इस तरीके की इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो होती है वो होती है। और फिर इसमें हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो प्रमोशनल कंटेंट्स कह लें या डायलॉग कह लें, टैगलाइन कह लें, मोटो कह लें, वो देखने में ऐसे खूबसूरत अल्फाज होते हैं। अब वो यहाँ पे मैं यूं कोट नहीं कर रहा कि मैं एक चीज कोट करूंगा तो वो सारे पीछे दरवाजे खुलते चले जाएंगे, तो इसको फिर कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप?
देखिए पहली बात तो ये है मिरज भाई कि मनफी चीजें हमेशा ज्यादा हाईलाइट होती हैं, मुस्बत चीजें हाईलाइट नहीं होती। और रिपोर्टिंग में भी एक साफी जो है वो जराइम को रिपोर्ट करता है, यानी आपने किसी गरीब की मदद कर दी तो ये चीज अनहोनी नहीं है, ठीक है ना, एक मामूल की चीज है,
ठीक है, इसे पजीराई नहीं मिलेगी।
मत पजीराई कुछ चाहता भी नहीं है,
ठीक है,
हर एक नहीं चाहता। रिपोर्टिंग जो होती है वो अनहोनी चीजों की होती है, अरे यूं हो गया, अरे यूं हो गया, गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चली हैदराबाद से कराची पहुंची, कराची से हैदराबाद पहुंची, हजारों गाड़ियां पहुंच रही है,
ठीक है।
अगर किसी गाड़ी के साथ अनहोनी हो गई, हादसा हो गया, तो वो रिपोर्ट होगा,
ठीक।
कहने का मकसद ये है कि मनफी चीजें या अनहोनी चीजें, खिलाफ मामूल चीजें रिपोर्ट होती हैं। जराइम का मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरा माशरा कुछ चोर हो गया है, स्ट्रीट क्रिमिनल बन गया है। कराची में 2-2.5-3 करोड़ की आबादी है
जी,
ठीक है
जी,
तो फीसद में अगर आप ढूंढने जाएंगे चोरों को तो क्या आप कह सकेंगे भी 2% भी होंगे? नहीं,
1% भी नहीं होंगे,
1% भी नहीं है
जी, बिल्कुल,
ठीक है ना, बहुत मामूली सजुर में। और अल्लाह कर ये भी खत्म हो जाए। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो माहौल बना के सवाल किया जा रहा होता है ना
जी,
ये माहौल बनाने की जरूरत ही नहीं होती,
ठीक है।
अक्सर लोग इज्जतदार लोग हैं, खुददार लोग हैं, मतलब के लाखों करोड़ों की आबादी में चारों तरफ आपको खुददार नजर आएंगे। बहुत कम लोग वो हैं जो इज्जतदार नहीं है, जो खुददार नहीं है, वरना एक गालिब तबका जो है जो सब्र शुक्र के साथ इज्जत नफ्स को संभालते हुए पर्दा पोशी की जिंदगी बसर कर रहा है। ये डायलॉग जो है बच्चों को रोना नहीं देख सकते, ये उन लोगों को कोई डायलॉग नहीं है, वो बच्चों को रोना भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हजरत इब्राहिम अला नबी वालसलाम जब हजरत इसमाइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जा रहे थे अपनी जोजा को, हजरत इसमाइल अलैहिस्सलाम को, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं इनको छोड़कर जा रहा हूँ? उन्होंने फेस किया हालात को, ठीक है, हजरत इसमाइल अलैहिस्सलाम एडिया रगड़ रहे थे पानी के लिए और उसी पानी से जो है आप जमजम उसके बरकत से पैदा हुआ। ये तस्वुर ही गलत है कि जी बच्चों को रोता हो कोई देख नहीं सकता। बच्चे मतलब कभी के दिन बड़े कभी की रातें, इंसान के ऊपर हालात आते हैं, गुर्बत भी आती है, अमीरी भी आती है, सब तरह के हालात आते हैं, बीमारी भी आती है, सब चीजें आती हैं। लेकिन इस बच्चों के रोने को देखकर आप लुटमार शुरू कर दें, ये तो तहजीब नहीं है ना। बहुत यानी ऐसा नहीं है हमारे माशरे के अंदर कि एक गरीब भूख से मर जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ऐसे लोग मौजूद हैं, खैराती इदारे मौजूद हैं, एक आदमी अपना जो है वो खाना जो है ना वो ले सकता है कहीं ना कहीं से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जी कहत पड़ा हुआ है और हर आदमी नफसा नफसे के अंदर है, ऐसी सूरत हाल तो है ही नहीं।
ठीक है, अब जो सवाल किया था वो तो सारा
बस हमारे यहाँ बड़े अजीबोगरीब जो है ना वो हालात यूं बन रहे हैं कि जब से ये YouTube ने पैसे देना शुरू किया ना, हर चीज एक अजीब अंदाज में रिपोर्ट होती है। एक वाकया हुआ नहीं है, 70 इंटरप्रिटेशन, एक वाक्य को सनसनीखेजी होगी तो लोग आएंगे, व्यूवर्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा। कल्चर जो है ना चेंज करने की कोशिश की जा रही है। चंद लोग जो हैं, गिने चुने लोग, कितने यूट्यूबर होंगे, कितने जो है ना वो सनसनी फैलाने वाले लोग होंगे। तो ये इस कल्चर को ख़त्म करना है, हमें खुद जो ना इदराक करना है हालात का, हमें खुद इदराक करना है कैफियत का और फिर फैसले करने हैं।
सब
कन्फ्यूज नहीं होना, जो कौमें कन्फ्यूज हो जाती हैं वो तरक्की नहीं कर सकती। हिम्मत बरकरार रखनी है आपने और आगे बढ़ना है।
एक सवाल और करूंगा फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल से, हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये कंक्लूड हो जाए और जो सीखने की चीजें एक मैं अर्ज करता चलूं। उसको अभी जैसे मैंने सवाल किया था और बड़ा बना संवरा के मैंने जो है ना बेस बना के सवाल आपकी तरफ भेजा था, लेकिन वो आपने बिल्कुल जो है ना वो उसका अपोजिट साइड हमें दिखा दिए। ये चीज होती है मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपसे भी बात कहूंगा कि तवज्जो से सुनिएगा मुफ्ती साहब जो जवाब इरशाद फरमाए, इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा कि बहुत सारे मौके पे हम किसी चीज से इम्प्रेस हो जाते हैं, कोई तासुर कबूल कर लेते हैं, लेकिन बाज अफराद होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसे हवास दी होती हैं, सलाहियतें दी होती हैं, जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, एट अ टाइम वो किसी भी चीज का दूसरा साइड जो होता है वो भी देख रहे होते हैं। मुझसे ये कैसे होता है मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सीख भी लेना। अब हर चीज जो है वो
देखिए हर चीज सीखने से आती है
जी,
ठीक है,
इतनी क्रिटिकल थिंकिंग के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाके सोचना। और बहुत माजरत के साथ मैं यहाँ पे ये भी कह दूं मदनी चैनल के नाजरीन के लिए, क्योंकि आपका एक मजहबी तशखुस है कि मुफ्ती इस्लाम है आप, तो बाज़ोकात बातें सुनने को मिलती है कि जी ये लोग यूं होते हैं, यूं होते हैं, यूं होते हैं, लेकिन मैंने आपको देखा है, मदनी चैनल के नाजरीन ने भी देखा आपकी, मतलब यूं फजाइल बयान नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो चीज़ है वो ऑन एयर है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि बिल्कुल अपोजिट साइड पे सोचना जाकर, ये कैसे होता है, हमारे यहाँ के लोग नहीं कर पाते हैं, ये कैसे सीखे क्या करें?
देखिए माइंड साइंस जो है एक अलग चीज होती है
जी।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनका जो प्रोफेशन होता है माइंड का नहीं होता, वो हुनरमंद होते हैं, उनके हाथ काम करते हैं, ठीक है, उनके जो है ना वो डिफरेंट पेशा का इख्तियार किए हुए होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो अफराद, अगर एक बंदा कुम्हार है तो वो शायर नहीं बन सकता,
अच्छा,
एक बंदा कारपेंटर है तो वो अदीब नहीं बन सकता। खुदादा सलाहियतें हर जगह होती हैं, ठीक है ना, हुसन और अकल
जी,
ना अमीरी देखती है ना गरीबी देखती है, ना गोरा ना देखती है ना स्याह ना देखती है,
ठीक,
मतलब सांवलेपन में भी एक हुसन होता है,
ठीक
ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि ये खुदादा सलाहियतें जो है वो कहीं किसी को भी आ सकती हैं। दूसरी चीज होती है किसी चीज का कसब के जरिए हासिल होना। शरीयत जो है अल्लाह का नूर है, कुरान और हदीस अल्लाह का नूर है, कुरान और हदीस दरीचे खोलता है, ये रहनुमा है हमारा। जब हम कुरान और हदीस को अपना रहनुमा बनाते हैं तो हम हर चीज को उसी पर परखते हैं, जब उसको परख कर आप आगे चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाती हैं।
ठीक, तो चलें यही समझ में आ रहा है कि इल्मे दीन की तरफ थोड़ा रागिब होंगे तो इंशाल्लाह अकल के दरीचे भी खुलते चले जाएंगे। हिदायत तो है ही, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, कॉल शामिल करेंगे। जी जनाब।
मुफ्ती साहब का सिलसिला अहकाम तिजारत, इसमें मुफ्ती साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर किसी ने कुर्बानी की नियत से जानवर लिया और बाद में प्रॉफिट लेकर बेच दिया और दोबारा फिर खरीद के कुर्बानी कर दी, तो क्या इस तरह कुर्बानी के जानवर से प्रॉफिट लेना जायज है या नाजायज है? और इसी तरह जो इज्तमाही तौर पर कुर्बानी करते हैं, अगर मेंबर ने लोगों से प्रॉफिट ले लिया, जानवर सस्ता लिया था और उनको प्रॉफिट पे हिस्से दिए, तो क्या इस तरह उनकी इज्तमाई जो लोग होते हैं उनकी इस सूरत में कुर्बानी होगी या नहीं? और मुनाफे की ये जो सूरत होगी उनके लिए इसका रखना जायज होगा या नहीं, इसकी शराई रहनमाई फरमा दीजिए।
असल में जानवर बदलने में कई सूरतें भी निकलती है ना। एक सूरत ये निकलती है कि आप बेहतर जानवर लेना चाह रहे हैं, तो बेहतर जानवर लेने की तरफ तो जाया जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट लेने के लिए बेचना, कुर्बानी के लिए लिया था, तो यह है उस जानवर से फायदा उठाने की सूरत। तो यूं उस जानवर से फायदा उठाने की जो है गुंजाइश नहीं है। रही बात इज्तमाही कुर्बानी वालों की, तो मैं तो पंफलेट देख के हैरान हो जाता हूँ
जी।
लिखा होता है शरी उसूलों के मुताबिक इज्तमाही कुर्बानी।
सर एक और जुमला भी लिखा, मुफ्तियान इकराम की जेर एहतमाम,
जेर निगरानी,
जेर निगरानी, जेर इंतजाम।
चंद ही लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे,
लिखने का तो है बस,
वरना तो ऐसे ऐसे ब्लेंडर इज्तमाही कुर्बानी वाले कर रहे होते हैं, अलमान वल हफीज, जो कवायद शरा की पाबंदी है उसका भी लिहाज बहुत सारी जगहों पर नहीं रखा जाता। बात यह है कि इज्तमाही कुर्बानी करने वाले आपका जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, जानवर खरीदते हैं, तो वो आपके वकील और नुमाइंदे हैं। अगर उन्होंने आपका पैसा इस्तेमाल किया है, आपकी तरफ से जानवर खरीदा, सब हिसाब आपको बताने के पाबंद है कि भी इतने का जानवर आया, इतना खर्चा आया, फलां चीज यूं ही यूं ही यूं ही, उनका नफा बीच में कहां से आ गया? कहीं भी उनका नफा में नजर नहीं आ रहा। बाज़ुकात ये होता है कि पैसे आने होते हैं बाद में
जी,
ठीक है, तो एक वेंडर जो है ना पहले से, या ब्रोकर कि भाई हमें इतने 100 जानवर चाहिए,
ठीक है, लोग आखिरी तारीखों में पैसे देते हैं, उसको जानवर लेना मुश्किल,
इतने जानवर चाहिए, तो वो ला मुहाला इतने सारे जानवर खरीद कर जब लाएगा वो बाज़ुकात अपने पैसे रखता है,
ठीक है।
लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो पैसे रखना है वेंडर का, या उसके पीछे जो पूरा एक सप्लाई चेन है माल की सप्लाई के लिए, तो वहां कहीं जाती मफादात का टकराव तो नहीं हुआ?
ठीक,
ये देखना जरूरी है भाई। एक जानवर जो है वो देहात से आया एक बड़े व्यापारी के पास, बड़े व्यापारी से इन्होंने सौदा किया,
ठीक है,
ना बड़ा व्यापारी इनका रिश्तेदार, ना उनका भाई, ना इनका लेना देना, ना कोई मफादात का टकराव, वो इन्हें मिल गया, वो नहीं मिलता तो कोई और मिलता, वो भी
कहीं ना कहीं से तो लेने
उसी भाव जानवर देता, ठीक है ना
जी।
ये तो है एक बिल्कुल फितरी सूरत हाल,
ठीक है।
बाज़ुकात यहाँ भी मफादात का टकराव होता है, यहाँ एक डम्मी आदमी डाला जाता है बीच में, वे तुम जानवर ले लो,
सही,
ठीक है, और तुम्हें हम जो ना वो मार्केट से दे देंगे नफा, फायदा पहुंचेगा इतना,
ठीक।
अब रिश्तेदार को, भाई को, फलां को, फलां को, अजीज को, ये है मफादात का टकराव,
ठीक।
ये जो है मकाम तोहमत है,
सही है,
यहाँ हम समझते हैं कि इसकी गुंजाइश नहीं है,
सही है।
आप ओपनली काम करें, ठीक है, आप एक चैरिटी बेस्ड काम कर रहे हैं, चैरिटी बेस्ड काम करने के अंदर आपके जो अपने मफादात हैं वो कहीं भी नहीं होने चाहिए,
ठीक,
ठीक है। आप एक जनरल मार्केट में जो मार्केट के उसूल हैं, आप बार्गेनिंग करके जानवर लें, आप बेहतर सौदा करके जानवर लें, आपकी जो च्वाइस है उसको तरजीह देते हुए जानवर लें, ये नहीं कि ये मेरा जानने वाला है इसको फायदा पहुंचाना है इससे लेने, इस बात की गुंजाइश नहीं होगी।
मतलब दो बात, एक इन्होंने पूछा था मुनाफा जायज होगा या नहीं होगा, इसका क्या जो मुनाफा ले रहा है, ये अगर आपने दो सूरतें बयान फरमाई, अगर ये मुनाफा ले रहा है तो इसका क्या हुक्म होगा?
देखिए बात ये है कि दो सूरतें बनी ना, एक तो वो वकील है, आपका वकील है, आपके पैसों को यूटिलाइज करते हुए उसने जानवर खरीदा, तो वो नफा कहाँ से आ गया बीच में? उसकी कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है कि वो जानवर खरीद कर लाया, उसने तिजारत की है और वो नफा लेगा।
ठीक,
ये तो खयानत है।
ठीक,
उसने किसी और के पैसों यूटिलाइज करते हुए जानवर खरीदे हैं, इससे कुछ निकालेगा तो ये तो खयानत होगी।
ठीक, एक गुनाहगार होगा,
गुनाहगार होगा
और इसकी तलाफी भी करनी होगी। और मतलब जिन्होंने कुर्बानी के लिए इस वाली कुर्बानी में हिस्सा डाला है, उनकी कुर्बानी पे कोई फर्क पड़ेगा? कुर्बानी हो जाएगी उनकी?
देखिए, जो कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर उनकी मिल्कियत में आ गए और उनके ही जानवर उनके लिए कुर्बान हुए, तब तो कुर्बानी हो जाएगी।
कुर्बानी तो हो जाएगी। ठीक, अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी जनाब,
मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मैं मालियाती इदारे में जॉब करता हूँ, वहाँ हर साल ऑडिट होती है। तो ऑडिट आने पर हमें कहा जाता है कि आपको ये कहना है और ये नहीं कहना, यानी कि झूठ कहने को कहा जाता है। तो अगर हम इस पर रजामंदी करें तो इससे क्या होगा? अगर नहीं हम रजामंदी करते तो इंतजार पैदा होता है, जवाब फरमा दीजिए।
क्या करना है इनको?
ऑडिट जो होता है वो इंटरनल ऑडिट करते होंगे, और जब वो एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो भाई इस तरीके से बात करनी है, चीज जाहिर करनी है, नहीं जाहिर करनी, ये जॉब पे रखते हुए या ट्रेनिंग के दौरान बताया जाता है, तो इसको ये ओके करें या नहीं करें?
देखिए, जाहिर करना और चीज होता है
जी,
और झूठ बोलना और चीज होता है।
ये झूठ बोलने का,
ठीक है ना? तो जाहिर बात है, एक ऑडिट के अंदर सारी चीजें तो देखते ही नहीं है।
ठीक है,
ऑडिट होता है मखसूस चीजों को, किसी भी एक चीज को देख लेंगे उठा के। वो भाई मिसाल के तौर पर सप्लाई चेन उनको देखनी है तो 2-3 सौदे देख लेंगे।
ठीक है,
ठीक है, कोई और चीजें उनको देख ली है तो 1-2 चीजें देख लेंगे।
ठीक,
हर चीज तो वो देखते भी नहीं है।
ठीक,
झूठ बोलने की बहरहाल इजाजत नहीं है, झूठ बोलने का जो गुनाह है ये तो लाजिम आएगा।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है, मेरे ऊपर कर्जा है तकरीबन 4.5 लाख से कुछ ऊपर है और इतनी ही रकम मेरे पास मिली हो जाए
तो,
लेकिन मेरी जो आमदनी का कोई जरिया नहीं, कोई थोड़ा बहुत करता हूँ उससे ला सकता, लेकिन बच्चों के अखराजात हो पिछले के सिलसिले में मैंने अभी तक कर्जा भी नहीं पार पा रहा, क्योंकि बच्चों के अखराजात बहुत हैं, घर के अखराजात हैं। तो मैंने पूछा था कि मुझ पर कुर्बानी इस साल वाजिब है कि नहीं?
4.5 लाख रुपए कर्जा है इनके ऊपर जो अदायगी करनी है, और 4.5 लाख रुपए ही कुल इनकी मिल्कियत में है, आया इनको कुर्बानी होगी या नहीं?
इनके पास और ज्यादा जरूरत सामान, सोना चांदी, माल तिजारत और ज्यादा जरूरत सामान वगैरह जो है वो भी अगर नहीं है और कर्जे से निकाल कर कुछ बाकी नहीं बचता तो जाहिर बात है साहिब निसाब नहीं हुए, कुर्बानी तो नहीं होगी फिर वाजिब।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
क़िबला मुफ्ती साहब, ये इरशाद फरमाए कि आजकल कमीशन के हवाले से कुछ इश्यूज आते हैं, बाद में पार्टियां मुकर जाती हैं कि हमने नहीं बोला था, तो इस हवाले से हमने शरई तौर पे सुना है कि कॉल रिकॉर्ड करना किसी के भी मना है, तो क्या हम उस वक्त ये कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि बाद में कमीशन का मसला ना हो, उनको याद दिलाया जाए कि आपने कमीशन देनी है, तो वो कॉल हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? इस हवाले से रहनुमाई फरमाए। दूसरा है कि जो हमने सुना है कि इंसान के नसीब में जो होता है वही उसको मिलता है, अब इंसान ने भाग दौड़ की डील करवाई, अब उसको अगर कमीशन में कोई डंडी मार देता है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसने नसीब खा लिया इसका, इसको नसीब नहीं मिला?
देखिए, कॉल रिकॉर्ड करने का जो मामला है ये बिला शुबा गैर अखलाकी बात मामला है और बहुत सारे फितनों की बुनियाद भी है कि लीक कॉल से फिर जो इश्यूज हो रहे होते हैं, एक आदमी एक फ्रेंडली माहौल में जो गुफ्तगू कर रहा होता है और सामने वाला भी उसका एक बेतकल्लुफ दोस्त होता है, साथी होता है, और फिर जो मामला बाहर आते हैं तो जिन चीजों पर पर्दा है उन पर पर्दा रखने का हुक्म होता है। अल मजालिस व अमाना, मजालिस जो है वो अमानत होती है, आपस की जो बात है वो अमानत होती है, ये नहीं होता कि जनाब आपस की बात हुई और पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया जाए। तो कॉल रिकॉर्डिंग करना उसका सबब बनता है। तो यूं नॉर्मली जो लोग हैं उनको कोई हाजत नहीं होती, कोई दाई और जरूरत का ऐसा मुहर्रिक नहीं होता कि वो कॉल रिकॉर्ड ही करें। आजकल व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है, जाहिर बात है एक बंदा कोई वॉइस भेज रहा है तो उसको रिकॉर्ड करने की हाजत ही नहीं, वो पहले से भेज रहा है, उसकी तरफ से एक चीज़ होती है। वहाँ भी व्हाट्सएप में भी ये नहीं होता कि अगर किसी ने रिकॉर्ड मैसेज भेज दिया है तो आप दुनिया में चला दें, ठीक है? जो वो रिकॉर्ड आ ही गया आपके पास कोई वॉइस रिकॉर्ड होकर, वहाँ भी एक शख्स की प्राइवेसी होती है, एक शख्स के जाती हुकूक होते हैं, एक शख्स की बाज़ूकात कारोबारी प्राइवेसी होती है, निजी प्राइवेसी होती है, तो इन सारे चीज़ों का ख्याल रखना वहाँ भी ज़रूरी है। और ये कोई वाहिद हल नहीं है, जिसको नहीं देनी वो कॉल रिकॉर्ड कर ले तब भी मना कर देगा, नहीं देता मैं, फिर क्या करोगे? असल तो मिजाज है ना
जी
ठीक है ना, मिजाज लोगों का ऐसा है कि वो मुकर जाना उनकी आदत है, तो वो अपनी कही हुई बात से भी मुकर सकते हैं और कहकर भी मुकर सकते हैं, मानते हुए भी मुकर सकते हैं, तो फिर मिजाज का मुकाबला कैसे करेंगे? तो जो खदशा आपका है इसको किसी और अंदाज में रखा जाए, आप मुलाकात कर लें, मुलाकात करते हुए देखें किसको साथ ले जाएं, भाई ये भी मौजूद था उस वक्त में मौजूदगी में, जो बुनियादी जराए हैं एक बात की तौसीक के और याद दिहानी के, उनको इस्तेमाल किया जाए।
मतलब ये किया जा सकता है जैसे किसी से मेरी डीलिंग चल रही है और मैं सौदे पे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बैठ के बात हो रही है, चाहे कॉल पे बात हो रही है, चाहे व्हाट्सएप पे बात हो रही है, अब जो भी डीलिंग फाइनल हुई तो उसका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैं एक टेक्स्ट मैसेज भेज दूं कि आज जो हमारी बात हुई है तो उसका नतीजा ये निकला कि मिसाल के तौर पे ये फुला फुला प्रॉपर्टी जो मैं आपको बिकवा रहा हूँ इस पर 2.5% आप देंगे, ठीक है ना, आपने यही कहा है, इतना ही भेज दे सिर्फ।
ठीक है, ठीक, वो ओके कहेगा,
वो ओके कहेगा, नहीं भी कहेगा तो उसके पास तो रिकॉर्ड में आ गया, तो ये आपकी तरफ से चला जाएगा और इस पर कोई शरण मसला भी नहीं होगा।
वक्त जरूरत उसी को बता सकता है बंदा
जी कि भाई ये मैंने तो बता दिया था आपको, मुझसे ये नसीब वाली बात,
क्या सवाल था,
नसीब खा गया कि हर चीज जो आपके नसीब में वही मिलेगा, अब अगर कोई ऐसी हमारी आमदनी का जरिया था कि जो हमें लग रहा था कि आमदनी होने वाली है और वो बीच से ही जो है ना वो कट आउट हो गया है, तो हम ये बोले कि कोई शख्स जो है वो मेरा नसीब खा गया है या नसीब ले गया है, ये कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्या समझे?
देखिए बाज़ुकात एक चीज मिलनी होती है वो मिलती है, बाज़ुकात एक चीज मिलनी होती है किसी वजह से, यानी तकदीर जो है उसकी किस्में हैं, तकदीर की तीन किस्में उन्होंने बयान की हैं, खुलासा उनका यूँ निकलता है कि एक चीज मिलनी नहीं है लिखा हुआ तकदीर में, वो अटल है टल ही नहीं सकती, एक चीज वो है कि जो किसी की दुआ से रद्द हो सकती है, एक चीज वो है जो मुअल्लक है कि भाई ये काम बंदा करेगा तो मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, तो हो सकता है आपने जो गुनाह किए उन गुनाहों से जो नौसत हुई उसकी वजह से रिस्क में तंगी वाकई हो गई, बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो रिस्क में तंगी लाते हैं, जिनमें से एक नमाज तर्क करना भी है, नमाज तर्क करना रिस्क में तंगी लाता है, और बहुत सारे ऐसे अमाल बयान हुए किताबों के अंदर, तो हो सकता है वो जो रोजी आ रही है नसीब में तो थी लेकिन आपकी किसी कोताही की वजह से वो बेक हो गई। जी
कॉल दीजिए।
पार्टनरशिपिंग में जिसमें मुख्तलिफ पार्टनर्स पैसे मिलाते हैं, तो उसमें अगर कोई एक पार्टनर स्लिपिंग पार्टनर बनना चाहता है तो स्लिपिंग पार्टनर बनने के लिए इजाजत पहले से लेना दूसरे पार्टनर से जरूरी है या बाद में भी ली जा सकती है, तो इस हवाले से कौन सी इजाजत जो है वो मोतबर करार पाएगी?
देखिए स्लिपिंग पार्टनरशिप का जो इशू है इसका ताल्लुक है इंतजामी चीजों से कि एक बंदा जो है फिजिकली एक्टिविटी करेगा या नहीं करेगा, तो शुरू में तय होना बहुत जरूरी है, इसकी कई वजूहत हैं, एक तो तनाजे का बायस बनेगा, दूसरा यह है कि हमारा उर्फ ये है ज्यादातर केसों में ऐसा होता है कि स्लिपिंग पार्टनर का नफा कम रखा जाता है कि भाई काम तो मैं कर रहा हूँ तुम काम नहीं कर रहे, पैसे हमारे बराबर हैं, तो लिहाजा काम करने वाला ज्यादा नफा रख रहा होता है, तो अब अगर तय नहीं किया तो फिर बाद में ये फार्मूला जो है वो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन एक आदमी ने बिलफर्ज तय किया कि मैं वर्किंग पार्टनर हूँ, बाद में वो अपने पार्टनर की रजामंदी से स्लिपिंग पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहता है तो जा सकता है, इसी तरीके से वो दुराने माहिदा अपना फार्मूला चेंज करना चाहते हैं नफा नुकसान का वो भी चेंज कर सकते हैं, और अगर पहले जो है वो स्लिपिंग था बाद में वर्किंग बनना चाहता है तब भी अपने पार्टनर की इजाजत से कर सकता है, तो यूं वसत तो है लेकिन इब्तदाई माहदे में चीजें क्लियर होनी चाहिए। जी
मुख्तलिफ सवाल है हमारे पास कि मंडी में एक कैंप लगा दिया जाता है और उसमें मुख्तलिफ 150 जानवर होते हैं, उसके रेट फिक्स कर दिए जाते हैं, तो अब उसमें से कह दिया जाता है जी जो आप पसंद करना चाहें ले लें, तो इस तरीके की तिजारत और उसमें से जाहिर सी बात है अब जो भी जाता होगा वो ज्यादा फरबा ज्यादा खूबसूरती देख के निकालता होगा, तो आया जायज होगा नहीं होगा और ये क्या सूरत होगी?
जी हाँ ये जायज़ है, इसमें नाजायज होने की तो कोई वजह नहीं है क्योंकि जानवर आपके सामने खड़ा हुआ है और रेट बता दिए कि भाई जानवर इतने का है, तो जब सब जानवर एक जैसी कीमत के हैं तो आप जिस पर हाथ रखें वो ले लें, आपके सामने मौजूद है आप अपनी चॉइस कर रहे हैं आप देख रहे हैं भाल रहे हैं आपके सामने वो जानवर के साफ मौजूद हैं कौन लंगड़ा है लुला है काना है अंधा है क्या है ये सब आप देख रहे हैं और आप अपनी तरजीहात के मुताबिक उसको ले रहे हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है।
ठीक
जायज़ है ये मामला।
अगली कॉल दीजिए।
سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپنی کے ذریعے مختلف آئٹمز آتے ہیں دکان پر بیچنے کے لیے، اور جب ہم مال خریدتے ہیں تو ہم سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو 7 دن کا کریڈٹ چاہیے یا 15 دن کا کریڈٹ چاہیے، تو اگر 7 دن کا چاہیے تو 7 دن کی فیس الگ ہوتی ہے اور 15 دن کا چاہیے تو اس کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے 7 دن کے مقابلے میں، تو یہ ارشاد فرمائے جو 7 دن کی فیس ہم سے ایکسٹرا چارج ہوتی ہے یا 15 دن کی ایکسٹرا چارج ہوتی ہے، یہ سود کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟
اصل میں ہر مارکیٹ کی اپنی لینگویج اور زبان ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اس لینگویج اور زبان کو نہیں دیکھتے، بعض اوقات دیکھا بھی جاتا ہے آپ کو طلاق دے دے اپنی بیوی کو،
جی
ٹھیک ہے نا، تو لینگویج اور زبان تو سب سے بڑی جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے، ڈکشنریاں کھلنی پڑ جاتی ہیں، معنی دیکھنے پڑ جاتے ہیں، تو خرید و فروخت کاروبار کے اندر سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریالٹی، کہ حقیقت حال کیا ہے، آپ کو اس سے سروس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مال آپ نے لیا وہ آپ چوم چاٹ کے دکان میں سے جا کے واپس کریں گے تو ہم کہیں ٹھیک ہے فیس ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، آپ اس سے ایک چیز خرید رہے ہیں وہ آپ کی پراپرٹی ہو جائے گی، آپ سفید سیاہ کے مالک ہو جائیں گے، آپ اس چیز کو بیچ دیں گے، تو ہم نے اس کی ریالٹی میں یہ دیکھا کہ فیس فیس کا جو معنی ہے مجازن استعمال ہوا، حقیقت میں یہ خرید و فروخت ہے، تو جب یہ چیز خرید و فروخت ہے تو وہ جو فیس کے الفاظ ہیں اب وہ ثانوی حیثیت اختیار کر گئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو فیس کہا جائے گا، بات ہو رہی ہے معاوضے کی کہ 7 دن کے کریڈٹ پر اتنا معاوضہ ہے اور 15 دن کے کریڈٹ پر اتنا معاوضہ ہے، تو ایک کسی بھی ڈیل سے پہلے مال کا جو مالک ہے اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بارگیننگ کرے، گاہک کا بھی رائٹ ہوتا ہے جو خریدار ہے اس کا بھی، تو یہ ایک بارگیننگ پوزیشن ہے کہ آپ کتنے کے ادھار پر خریدیں گے، کتنی بھی نہیں خریدیں گے، اور وہ پھر ادھار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ریٹ آپ کو دیتا ہے، یہ ایک بنیادی طور پر تجارت ہے، اور اس طرح کا جو آپشن ہے یہ استعمال کرنا بھی جائز ہے، اس سے سودا سود میں نہیں چلا جاتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ سودا اگر 7 دن پر لاک ہوا ہے جو بھی اس کی قیمت ہے وہی قیمت اب لاک ہو گئی ہے، اور اگر آپ لیٹ بھی کرتے ہیں کسی وجہ سے، بلا وجہ تو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جو آپ نے وعدہ کیا یہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے شرعی اعتبار سے، تو بلا وجہ تو آپ کو تاخیر کی اجازت نہیں ہے، لیکن بالفرض تاخیر کوتاہی سے ہو یا بغیر کوتاہی کے ہو تب بھی اب یہ سودا یہی رہے گا، قیمت وہی رہے گی، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے تو 15 دن کے بعد دیے اس لیے یہ جو معاہدہ ہے ہمارا وہ چینج ہو گیا اور اب آپ کو 15 دن کی قیمت دینی پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا، قیمت لاک ہو چکی، قیمت مال کی ہے وقت کی نہیں ہے، وہی قیمت دینی ہوگی۔
تو ایک سوال ہے تھوڑا سا اور اس میں میں چیزیں ایڈ کر کے آپ کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، بعض کمپنیز جو ہیں وہ سروس پرووائڈر ہوتی ہیں، اچھا آج کل ہی آن لائن بھی کام ہو رہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ آن لائن ایک ویب سائٹ لانچ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مختلف کام کرنے والے افراد کو لنک کر دیتے ہیں، تو وہاں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ سروس لیتا ہے، اب جس کے ذریعے سے سروس لی گئی ہے یعنی آن لائن، چاہے وہ ویب سائٹ ہو چاہے کمپنی ہو، وہ دو افراد کو ملوانے کا کام کر رہی ہے، دو افراد ملے اور ان کی جو بھی ڈیل تھی وہ ہوئی اور اس ویب سائٹ کو یا کمپنی کو کمیشن مل گیا، اب ان دو افراد کا براہ راست ہو جانا، ڈائریکٹ ہو جانا اور کمپنی کو بیچ میں سے اسکپ کر دینا، ویب سائٹ کو بیچ میں سے اسکپ کر دینا، آیا اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیے دو افراد ڈائریکٹ اگر ہو جاتے ہیں تو مانے کیا ہے، کیا وہ غلام ہے، خرید رکھا ہے کسی نے ان کو کہ وہ ڈائریکٹ ہو کے ڈیل نہیں کر سکتے، باؤنڈ کیا تھا کمپنی نے ہم سودا کروائیں گے تو ہمارے محتاج رہیں گے آپ، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا، نہ ایسا مارکیٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ جو ڈیل کسی کے ذریعے ہونے جا رہی ہے
جی
ہم بھی یہ کہتے ہیں، جب آپ بروکر کو استعمال کرتے ہیں تو پھر پارٹی سے ملاقات کے بعد ڈائریکٹ نہ ہو جائے اس ڈیل، ایک ڈیل کے اندر،
ٹھیک ہے،
اب ایک اخلاقی تقاضا ہے، آپ نے اس کو زحمت دی ہے، اس کا وقت صرف ہوا ہے، اس کا بعض اوقات پیسہ بھی صرف ہوتا ہے، اس ڈیل کو آپ بروکر کے ذریعے ہی مکمل کریں،
صحیح،
اب آپ کی ڈیل ہو گئی، آپ نے سمجھا بڑا اچھا آدمی ہے، آگے تو رشتے داریاں تک ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے،
تو ہو جاتی ہیں،
پتہ نہیں کیا کچھ کاروبار شروع ہو جاتے ہیں،
تو وہ
یہ تھوڑی ہے کہ بروکر نے کھٹے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اب آگے آپ دونوں جو کچھ بھی کریں گے خبردار جو میری اجازت کے بغیر کیا،
ٹھیک ہے آپ نے جو جواب دیا وہ شرعی جواب تو ہو گیا، لیکن اس میں ایک اخلاقی پہلو یہ آ جاتا ہے کہ اس فرد کی جو سروس دے رہا ہے، جو کام کرنے والا ہے، چاہے وہ کارپینٹر ہے چاہے ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے، ڈرائیور ہے، تو اس کی اپنی تو ورث نہیں ہوتی مارکیٹ میں نا، اس کو جو کام مل رہا ہوتا ہے وہ تو کمپنی کے بیہاف پہ مل رہا ہوتا ہے یا ویب سائٹ کے بیہاف پہ مل رہا ہوتا ہے، وہ ٹرسٹڈ جو ہے نا کمپنی ہوتی ہے، ویب سائٹ ہوتی ہے، ہاں جب یہ کام کرتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے تو اس کا لنک بنتا ہے، تو اس کا لنک بننے کا ذریعہ تو وہی بنا نا.
دیکھیے تمام اخلاقیات شریعت کی تعلیمات کے تابع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں نہ تو کوئی نقصان کا معاملہ ہے نہ کچھ اور معاملہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایپ کے ذریعے گاڑی منگوائی، ٹھیک ہے
جی،
ڈرائیور آپ کو اچھا لگا
جی،
پتا چلا آپ کے تو محلے کا ہے، رس بھی بڑھ گیا
صحیح،
اور آپ نے روزانہ جانا ہوتا ہے
صحیح،
ڈرائیور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے سر آپ روزے جاتے ہیں تو آپ اس سے ڈائٹ ہو جائیں
صحیح،
اس میں کون سی برائی ہے؟ 25% جو کو کمپنی کو دے گا اس غریب کا فائدہ ہو جاتا ہے، اب وہ اس کی جیب میں چلا جاتا ہے.
تو پھر کمپنی کو یا ویب سائٹ کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ پھر اسے اگر چاہے تو اس کے ساتھ کام ختم کر دے، اس کی باؤنڈنگ جو کمپنی کی اور اس شخص کی ہوئی بھی تھی کہ بھی ہم آپ کو کام دلائیں گے، تو کمپنی کو رپورٹ ملتی ہے کہ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو کمپنی پھر اس کو اسکپ کر سکتی ہے، کمپنی کے پاس یہ رائٹ ہے؟
ہاں اسکپ کرے گا تو رہے گا کون پھر باپ پیچھے اس کے؟
ان کے پاس سینکڑوں
بنیادی حقوق تو آپ سلب نہیں کر سکتے نا لوگوں،
جی جی جی،
تو بنیادی حقوق میں سے چیزیں ہیں، کمپنی کا کوئی ایسا معاہدہ نہ ہے اور نہ وہ لگا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں فری لانسر ہیں، فری لانسر کو آپ کیسے باؤنڈ کر سکتے ہیں؟
سر بعض اوقات معاہدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہیں ہوں گے، یہ معاہدہ ہوتا ہے بعض اوقات.
دیکھیے ایک بندہ ہے جو آپ کا اجیر خاص ہے
جی،
اس کے الگ رائٹس ہوتے ہیں، فری لانسر کے الگ رائٹس ہوتے ہیں. فری لانسر کے متعلق آپ وہ چیزیں نافذ نہیں کر سکتے کہ جو جس کا تقاضا جو ہے اس کی جاب نہیں کر رہی ہوتی.
ٹھیک، کال دیجیے.
جی جو ہم باغ کو پھل پکنے سے پہلے سیل کر دیتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟
سوال تو بڑا سمپل ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جناب کسی جگہ جامن لگ رہے ہیں اور وہ تھوڑے کچے تھے، بیچ دیے آپ نے اور وہ توڑ کے لے گیا سارے اپنے ساتھ. عملاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو پورا پورا باغ بیچنے کی بات ہوتی ہے، اور کافی اس مسئلے کے اندر فقہی پیچیدگی ہے. دارالافتاء اہل سنت سے فتویٰ بھی جاری ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ ای میل کر کے آپ فتویٰ حاصل کریں اور اس کی جو بھی شرائط ہیں اس مسئلے کی اس کے مطابق پھر عمل کریں، جن شرائط میں اجازت دی گئی ہے. دارالافتاء ایٹ دعوت اسلامی، یہ دارالافتاء@dawatislami.net ای میل ایڈریس ہے، اس ایڈریس پر آپ ای میل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فتویٰ بھیج دیا جائے گا.
اور یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین، احکام تجارت بالخصوص جو دیکھتے ہیں ہم پروگرام میں، مفتی صاحب کئی بار یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دارالافتاء تشریف لے آئیے یا آپ دارالافتاء میں رابطہ کر کے اس مسئلے کی تفصیل لے لیجئے، تو اپنے موبائل فونز میں جہاں دسیوں سینکڑوں ہزاروں فون نمبرز ہیں وہاں دارالافتاء اہل سنت کا نمبر اور اس کا ای میل ایڈریس بھی محفوظ کر لیجئے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے وقتاً فوقتاً کام آتا رہے گا. ورنہ یہ تجربہ ہے کہ جب چاہیے ہوتا ہے نمبر تو پھر ادھر ادھر رابطہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس موقع پہ بعض اوقات غلط قسم کے افراد جو ہوتے ہیں ان کے بھی ہتھے بندہ چڑھ جاتا ہے، پھر کچھ کا کچھ مسئلہ پتہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہ عمل کر کے بیچارہ پریشان خود بھی ہو رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پھر کر رہا ہوتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے، مفتی صاحب موجود ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت، احکام